તારીખ 25/3/1994 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 751 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું આગ્રામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 23.
को आती है उसकी ज्ञानी होने की तैयारी हो गई। संक्षेप में इस विषय को पूरा करके इसके परिणाम में उसी का बार बार लक्ष्य से नहीं छूटना हो, उसका ही भजन पर भजन शब्द आया है। भू भाव तो भी मैं से आया है, भू भू मैंने होना, भू में से भाव, भाव मैंने होना, उसमें से भजन हो गया है। क्या होने की क्रिया को भजन कहते हैं, भजना नहीं समझते। परिणाम में यही चला करे, यही चला करे, यही चला करे, उसको भजना कहते हैं। इस पर से नाम आया भजन, भजना की क्रिया पर से नाम आया भजन। भजना एक क्रिया है, भजन एक कार्य है इसका। हाँ वही रहेगा, जिसको जिसकी चाहना है, प्रेम है, उसी का ही भजन उसको चलेगा। मूल विषय पर आते हैं हम, कि उन्होंने ये सौभाग्य भाई कि जो आखिरी दिनों में सम्यक दर्शन और स्वानुभूति को प्राप्त हुए श्रीमद जी के समागम के कारण से, श्रीमद जी की कृपा के कारण से समझो, उनकी वृद्धावस्था में एक काव्य लिखा जिसका नाम है आत्मसिद्धि शास्त्र। वो साल में महीना दो महीना व्यवसाय को छोड़ करके निवृत्ति क्षेत्र में चले जाते थे। ऐसे निवृत्ति क्षेत्र में जब थे वो, उन्होंने विनती किया था कि मेरे लिए कोई ऐसा काव्य दो, मैं आपके वचन को स्मरण में नहीं रख सकता हूं, लेकिन पद में होगा तो मैं गाया करूंगा, कंठस्थ हो जाएगा। तो उनके लिए उन्होंने एक दिन शाम को लिखने बैठ गए, अंतर में से स्फूर्ण आई, एक साथ 142 पद की रचना कर दी। वो आत्मसिद्धि शास्त्र में उन्होंने संकीत के तीन प्रकार का वर्णन किया है। उसी संदर्भ में सौभाग्य भाई ने पत्र लिख करके पूछाया है, उसका उत्तर वो दे रहे हैं इस पत्र में। इस पत्र की कोई विशिष्टता है तो वो है कि किसी भी मुमुक्षु को सम्यक दर्शन तक पहुंचना है तो बिल्कुल शॉर्टकट कैसा होता है। क्या कोई लंबी चौड़ी सिरफोड़ी में नहीं जाना हो तो एकदम सम्यक दर्शन पाने के लिए शॉर्ट क्या शॉर्टेस्ट कष्ट कौन सा होता है, ये इस पत्र की विशिष्टता है। इसलिए उन्होंने ये कहा कि वास्तव में संकेत परमार्थ संयोग दर्शन तो शुद्धात्मा के निर्विकल्प प्रतीति रूप ही होता है, लेकिन इसका जो कारण है, इसका जो अनन्य कारण है, एकमात्र कारण है, उस कारण पर हम संकेत का आरोप करके उसको भी सम्यक्त कहते हैं। और उस कारण का भी कोई अनन्य कारण है, उसमें भी सम्यक्त का आरोप करके उसको भी हम सम्यक्त कहते हैं। हम ही कहते हैं, इतनी बात नहीं, सभी वितरागों ने यही बात कही है, ऐसा उल्लेख भी इस पत्र में उन्होंने किया है। तो मोक्ष के लिए यह पत्र विशेष रूप से समझने योग्य और अंगीकार करने योग्य होने से इसका स्वाध्याय आज हम करेंगे। ओम सर्वज्ञाय नमः। आत्मसिद्धि में कहे हुए संकेत के प्रकारों का विशेषार्थ जानने की इच्छा संबंधी पत्र मिला है। आत्मसिद्धि शास्त्र भेज चुके हैं, पढ़ते पढ़ते उन्होंने लगा है कि उसमें संकेत के प्रकारों की बात आई है। किस प्रकार की वो बात है, इस प्रकार के संबंध में उन्होंने स्पष्टीकरण चाहा है। तो लिखते हैं कि आत्मसिद्धि में तीन प्रकार के संकेत उपदिष्ट है। तीन प्रकार के संकेत का उपदेश हमने दिया है। ध्यान से देखे तो ये तीन प्रकार के संकेत किन किन गाथा में है ये भी पता चलता है। एक तो प्रथम जो कारण है वो 17 गाथा में दिया है उन्होंने। दूसरा जो वर्णन किया है वो 120वीं गाथा है। और तीसरा संकेत के संबंध में लिखा है वो 111 नंबर की गाथा है। ऐसे तीन गाथा में उन्होंने ये बात कही है। फिर से 17 गाथा, 120 गाथा और 111 गाथा। 17 गाथा में वो लिखते हैं, स्वच्छंद मत आग्रह तजी वरते सदगुरु लक्ष संकित तेने भाखियों कारण वहीं प्रत्यक्ष। जो कोई मुमुक्षु जीव अपना मताग्रह को छोड़ करके, अपना अभिप्राय के आग्रह को छोड़ करके, अपना संप्रदाय के आग्रह को छोड़ करके और अपना कार्य पद्धति के विषय में स्वच्छंद को छोड़ करके, सिर्फ ज्ञानी पुरुष के बताए हुए मार्ग पर चलने का निर्धार रखता है, निश्चय रखता है, कहते हैं कि वही सम्यक्त का बीज है, प्रत्यक्ष है। हम इस मुमुक्षु में सम्यक्त का बीज देख रहे हैं, प्रत्यक्ष तौर से देख रहे हैं कि ये कारण है। संकेत तेने भाखियों कारण, कारण गणी प्रत्यक्ष, सम्यक्त का कारण गिन करके, प्रत्यक्ष कारण गिन करके हम इस कारण में संकीय सम्यक्त का आरोप कर सकते हैं। यानी ऐसा सम्यक्त्व होने पर, ऐसा कारण होने पर कार्य अवश्य अवश्य होने वाला ही है, ऐसा जानना चाहिए। तो ऐसे कारण में जो गुजरते हैं, इस मुमुक्षों की दशा कैसी है, बहुत संक्षिप्त में बात लिखते हैं एक ही पंक्ति में। आप्त पुरुष के वचन की प्रतीति रूप काव्या की अपूर्व रुचि रूप स्वच्छंद निरोधता से आप्त पुरुष की भक्ति रूप यह संकेत का पहला प्रकार है। क्या लिखा? आप्त पुरुष के वचन के प्रतीति रूप। आप्त माने क्या? जिसके वचन पर विश्वास रखा जाए ऐसे विश्वसनीय पुरुष को आप्त पुरुष कहने में आया है। जैसे सजीवन मूर्ति तीन होते हैं, सर्वोत्कृष्ट सर्वज्ञ परमात्मा होते हैं जिनेन्द्र देव, बाद में निर्ग्रंथ भावलिंगी संत होते हैं श्री गुरु छठे सातवें गोस्थान के धारक जो अंतर्बाह्य निर्ग्रंथ होते हैं, और तीसरे सत्पुरुष होते हैं जो चतुर्थ या पंचम गोस्थान के धारक होते हैं। ये तीनों के वचन विश्वसनीय विश्वास करने योग्य है मुमुक्षु के लिए। तीनों के वचनों में शंका की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। प्रतीति उसको कहते हैं कि निशंकता हो, और निशंकता कब आती है कि जब पहचान होती है तब। विषय का थोड़ा विस्तार करेंगे तो वो है कि कहां से पहचान आती है। दोपहर को एक प्रश्न चला था, आया था शायद विनोद जी का ही था कि बाह्य कोई चिन्ह है कि नहीं है, सम्यक दृष्टि को पहचानने के लिए कोई बाह्य चिन्ह है कि नहीं है। उत्तर में दिया था कि कोई बाह्य चिन्ह नहीं होता, कोई नहीं सकता। तो फिर कैसे पहचाना जाता है? सम्यक दृष्टि इनकी अंतरंग परिणति से पहचाना जाता है, बाह्य चिन्ह से कोई पहचाना जाता नहीं है। सम्यक दृष्टि की दो दशा होती है। कितनी दशा होती है? दो दशा होती है। सुबह बात चली थी अंशतः स्वभाव अंशतः विभाव। मूल दशा जो सम्यक दृष्टि की होती है, ज्ञानी की होती है, यह उनकी स्वरूपाकार परिणति है, स्वभाव सदृश परिणति है। ये ज्ञानी की मूल ज्ञान दशा को या ज्ञान धारा कहो। दूसरी है उत्तर दशा माने कर्म धारा। एक ज्ञान धारा और एक कर्म धारा। बड़ा सुदास जी ने लिया है ये बात को, कर्म धारा और ज्ञान धारा को। तो ये मूल दशा तक जो मुमुक्षु की का ज्ञान पहुंचता है वो सम्यक दृष्टि को पहचानता है। और सम्यक दृष्टि को किस रूप में पहचानता है ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानने लायक घटना है। इनकी उत्तर दशा जो होती है, कर्मधारा जो होती है, वो तो कर्म के उदय के साथ संबंध रखने वाले परिणाम अंश है, परिणाम के अंश है। पूरे परिणाम नहीं है, परिणाम के कुछ अंश है। लेकिन जिसको ज्ञान धारा कहे, वो ज्ञान धारा जैसा अपना परमात्मा स्वरूप है उस सदृश होने से स्वरूपाकार है, तो उसमें जैसा परम आत्मा है वैसी की वैसी ही है। इसलिए सम्यक दृष्टि के अंतरंग में जो परिगमन है, उस परिगमन का विषय जो निज परमात्मा है, इस परिणति के द्वारा इस परमात्मा का भी दर्शन मुमुक्षु को हो जाता है। कहां तक पहुंचे मुमुक्षु पहचानने में, कि ज्ञानी की परिणति के माध्यम से ज्ञानी के हृदय में विराजमान परमात्मा का दर्शन हुआ। तो ज्ञानी का ज्ञानी के रूप में दर्शन नहीं हुआ, ज्ञानी का परमात्मा के रूप में दर्शन हुआ, उसी को ज्ञानी की पहचान कहने में आई है। कुछ सुगानी भी लिखते हैं इस विषय में कि ये प्रवचन कर रहे हैं उसको मैं गुरुदेव नहीं मानता। क्या ये जो सौंदर्य में प्रवचन चल रहा है उसको मैं गुरुदेव नहीं मानता, प्रवचन के जो विकल्प चल रहे हैं उसको भी मैं गुरुदेव नहीं मानता। मैंने तो गुरुदेव का दर्शन किया है शुद्धात्मा के परमात्मा के रूप में, जो ध्रुचित बिंद है उसी को मैं गुरुदेव मानता हूं, क्योंकि इसकी परिणति में वो चीज है। इसलिए जो भी मनुष्य ज्ञानी को पहचानता है उसको ज्ञानी में परमेश्वर बुद्धि हो ही जाती है। इसलिए उनको वचन की प्रतीति आती है। वचन की प्रतीति रूप प्रथम सम्यक्त्व है, तो इस प्रकार से वचन की प्रतीति है, और आज्ञा की अपूर्व रुचि रूप, जो कहते हैं वो मेरे लिए शिरोधार्य है। इसकी आज्ञा को मैं शिरोधार्य करूंगा, इसकी आज्ञा निकली उसको मैं नीचे गिरने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर नीचे गिर जाएगी तो मेरे पैर नीचे वो कुचल जाएगी, तो मेरा बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। इस विषय में दिमाग में नहीं बैठे ऐसी एक बात कहना चाहूंगा कि गर्मी के दिन में, चैत्र वैशाख मास के गर्मी के दिन में दोपहर को 12 बजे कड़ी धूप निकलती हो सूरज से, उस वक्त ज्ञानी अगर ऐसा कहे कि ये सूरज नहीं है चंद्र है, अरे चंद्र नहीं है, आज अमावस्या की रात चल रही है। क्या अमावस्या की अंधेरी रात अभी चल रही है, हम मानेंगे कि नहीं मानेंगे? परमचंद जी क्या करना अभी? आत्मा को जागृत करने की बात है थोड़ी। ज्ञानी कोई पागल तो नहीं हो गए हैं? पागल होते भी नहीं है, लोग मान सकते हैं कि कोई पागल है, लेकिन पागल दूसरे को पागल ही समझते हैं। दुनिया पागलों की है, और पागलों ज्ञानी को पागल कहे तो उसमें कोई नई बात आश्चर्य की बात नहीं है। मतलब क्या है इस बात का? कि ज्ञानी जो कहते हैं चाहे हमारी बुद्धि सीधा इसका स्वीकार न करे, ऐसी कोई बात हो तो फिर से ज्ञानी कुछ ऐसी बात कहे कि जिसका स्वीकार हमारी बुद्धि नहीं करे तो हमें क्या करना, इस मुद्दे पर हमें विचार करना है। जैसे हम कहते हैं शास्त्र में ऐसा क्यों लिखा, ये वचन ऐसा क्यों आया है, शास्त्र में इधर तो ये लिखा उधर तो वो लिखा, तो हमको दोनों में शंका रहती है, इधर वाला सच्चा या उधर वाला सच्चा। समय सार राग को जड़ भी कहता है और राग को चैतन्य विकार भी कहता है, राग को जीव का भी कहता है और राग को पुद्गल का भी कहता है। कहता है कि नहीं कहता है? अब किस समय सार की कौन सी बात माने, दोनों परस्पर विरुद्ध है, दोनों बात मानने योग्य है। जिस कारण से जिस अपेक्षा से जो बात कही दोनों माननी चाहिए। भले ही हमारी बुद्धि बुद्धिगम्य प्रकार से उसका स्वीकार न करे तो भी हमें एक दफे ऐसा विचारना चाहिए कि हमारी बुद्धि में कुछ गड़बड़ है, इसलिए हमें ये बात बुद्धिगम्य हो रही नहीं है। कहां से लेना है? हमारी समझ में कोई गड़बड़ है, कहने वालों ने जो कहा है वो सही कहा है, सत्य कहा है, परम सत्य कहा है, इसमें कोई शंका करने का प्रकार होना चाहिए है। यानी उसी को ज्ञानी के वचन की प्रतीति कहने में आया है, ऐसी प्रतीति आती है तो ज्ञानी के वचन अंगीकार करने की योग्यता होती है, वरना वचन मिलते हैं अंगीकार होते नहीं है। ज्ञानी के वचन तो अमृत होते हैं, इसलिए उसको वचनामृत कहते हैं हम। वचन रूपी अमृत मिलने पर भी हम क्यों मरते हैं? क्योंकि अमृत हम पीते नहीं है, इसलिए मरते हैं। अमृत पीने वाला कभी नहीं मरता। अमृत पीने वाला मरता है क्या? कभी मरता है तो उसने अमृत नहीं पिया है, वो बात जरूर है। ऐसी वचन की प्रतीति आए और उसकी आज्ञा की अपूर्व रुचि हो, जान जाए तो जाए लेकिन आज्ञा छोड़ने की बात हो सकती नहीं है, उतने आज्ञा के अनुसरण करने की जरूरत लगे। रुचि कहां से पैदा होती है? रुचि जरूरत में से पैदा होती है। ऐसी रुचि हो और भक्ति स्वच्छंद निरोध रूप हो। क्या भक्ति तो करते हैं लेकिन स्वच्छंद सहित करते हैं, ऐसी भक्ति नहीं होनी चाहिए। स्वच्छंद माने क्या? कि अपनी मनमानी करना, उसी का नाम स्वच्छंद है। हम हमारे कल्पित प्रकार से आत्महित करना चाहेंगे तीन काल में होने वाला नहीं है। जैसा ज्ञानी ने कहा वैसा ही हम करें। सुभाग भाई श्रीमद जी की उपस्थिति में ही स्वर्गवास में चले गए। कुछ 17-18 दिन पहले इस अनुभूति को संप्राप्त हुए और समाधि मरण करके और स्वर्ग में गए। इनके एक स्वर्गवास के बाद वो पत्र लिखते हैं इनके परिवार के प्रति, तो उन्होंने पत्र जो लिखा है एक पंक्ति पढ़ने योग्य है, बहुत वजनदार बात है, इसलिए हम बताएंगे उसको। पत्रांक है 783। यह पत्र लिखा है फाल्गुन बदी 11 को, ये 751 वाला, और उसी साल में उन्होंने ये पत्र लिखा है अषाढ़ सुदी 4 को, जेठ बदी 10 को उसका स्वर्गवास हुआ है और अषाढ़ सुदी 4 को वो ये पत्र इनके परिवार को लिख रहे हैं। पत्र का हेडिंग लिखा है श्री सौभाग्य को नमस्कार। क्या? ज्ञानी अपने शिष्य को नमस्कार करते हैं, शिष्य गुरु को नमस्कार करे वो बात तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन दुनिया ने ये नहीं जाना कि गुरु शिष्य को भी नमस्कार कभी कभी कर लेते हैं। का मस्तक भी उन्नत हो जाता है, कभी ऐसे भी शिष्य पैदा होते हैं। श्री सौभाग्य को नमस्कार। श्री सौभाग्य की मुक्षु दशा तथा ज्ञानी के मार्ग के प्रति उनका अद्भुत निश्चय बार बार स्मृति में आया करता है। इनकी अनुपस्थिति है, हमको इसकी स्मृति बार बार होती है, लेकिन किस रूप में होती है कि इनकी जो मोक्ष दशा थी अद्भुत थी, ऐसा मोक्ष हमने देखा नहीं, ऐसी दशा देखी थी उन्होंने। कुछ शास्त्र में पढ़े थे, अनपढ़ जैसे थे और काफी आर्थिक दारिद्र में चल रहे थे, कुछ व्यवसाय करते थे फिर भी इसमें सफलता नहीं मिल रही थी, ऐसी परिस्थिति में इनकी मुमुक्षुता जो उजागर हुई थी, ऐसी मुमुक्षुता कहीं देखी नहीं जाती आज भी। अद्भुत की मुमुक्षुता थी उनकी, अद्भुत। इसका तो सौभाग्य का तो जो चित्र है वो तो श्रीमद जी के शब्दों में हमने खींचा है और आत्म जागृति के पिछले दो अंक में वो दो किस्त में पूरा हुआ है, इसमें नहीं होगा। तो आखिर के जो फरवरी मार्च के दो अंक है उसमें उनके शब्दों में से खींचा है। इसकी मोक्ष दशा को बहुत याद आती है और ज्ञानी के मार्ग के प्रति उनका अद्भुत निश्चय था, बस ये के कारण से उतर गए। सम्यक दर्शन प्राप्त करके अनंत भाव का छेद कर दिया, आयु पूरा करते करते पहले कुछ दिनों में, इसका एक ही कारण था, शास्त्र ज्ञान नहीं था। एक ज्ञान हो गया था उनको कि ज्ञानी का मार्ग है वही मेरे लिए अनुसरण करने योग्य है। ज्ञानी के मार्ग का उसका जो निश्चय था कि इस मार्ग पर ही चलना है, मेरी मनमानी नहीं करना है, स्वतंत्र से नहीं चलना है, उस अद्भुत निश्चय था विश्व ज्ञान प्राप्ति में आ गए। इसी को स्वच्छंद निरोध भक्ति कहते हैं। क्योंकि जिसको परमेश्वर दृष्टि से वे देखते हैं उनके सामने स्वच्छंद करने का कोई दुस्साहस हो ही नहीं सकता, मनुष्य कर ही नहीं सकता। अगर ऐसी मनुष्य की दशा आ जाए तो उसको दूसरा कुछ करने का नहीं है, उनको संकेत का बीज वहां बोया गया ऐसा समझ लो। इतने मात्र में, इतने संक्षेप मात्र में संकेत का बीज बोया गया और यह संकेत है उसका अंकुर उठेगा उठेगा और उगेगा ही, ये निश्चय बात है। इसका लॉजिक है बहुत सुंदर, उसका न्याय वो है कि उन्होंने ज्ञानी को अंतरंग परमात्मा को, ज्ञानी के अंतरंग में विराजमान परमात्मा को देख लिया, पहचान लिया, इस कारण से अपने निज परमात्मा जो सामर्थ्य रूप है उसको पहचानने की क्षमता आ गई, योग्यता आ गई। और ऐसी योग्यता जिसको आती है कि जो अपने स्वरूप को पहचाने उस स्वरूप में लीन होने के काबिल हो जाते हैं, जिसको परमार्थ सम्यक दर्शन कहने में आता है। तो पूरी नींद बिठाई है उन्होंने, क्या फिर से सम्यक दर्शन में क्या होता है? संयोग दर्शन में मेन स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन होता है, निज स्वरूप माने निज परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है। उस परमात्मा का परोक्ष दर्शन निज स्वरूप की पहचान में होता है और उस परमात्मा का इनडायरेक्ट दर्शन सत्पुरुष के अंतकरण में हृदय में विराजमान परमात्मा में हो जाता है। तो ये परमात्मा दर्शन है, इसका लिंक बिठा दिया है उन्होंने। देखो कितना शॉर्टकट है, ये स्वरूप दर्शन का ये कितना शॉर्टकट है। न कोई गाथा पढ़नी है, न कोई गाथा का अर्थ घटन समझना है। वैश्विक को 18 साल की उम्र में सम्यक दर्शन हुआ, छोटी उम्र में, 18 साल की उम्र में थी, सम्यक दर्शन हुआ, सहानुभूति हुई तो कुछ मुमुक्ष जो इनके समीप थे उनको पता चला तो गुरुदेव को बोले कि एक बहन है छोटी उम्र की, उनको सहानुभव हुआ है। तो गुरुदेव बोले कि अच्छा ऐसी बात है, कोई बुलाइए उसको। तो वो भाई है, वो आप शायद जानते होंगे जो पुराने मोक्ष हुए पुरुषोत्तम दास कामदार, वो उनको लेकर के गए। वो पुरुषोत्तम दास भाई ने हमको ये बात बताई है कि हम बैंसरी को लेकर गए थे इस उम्र में। तो गुरुदेव ने परीक्षा किया उनका बेंसरे का, कि भाई बोलता है कि तुमको ज्ञान हुआ है, क्या सही है? तो वो तो ऐसे बोलती नहीं है, बोल रही हमको ज्ञान हुआ है ऐसे नहीं बोली, कोई बात नहीं ये कहता है। तो चलो गुरुदेव ने कोई शास्त्र हाथ में लेकर के कोई गाथा निकाल करके बोला कि इसका अर्थ करो, तुम ज्ञान हुआ है ना, कहो इसका अर्थ। गुरुदेव की जो व्यक्तित्व था वो इतनी हायर पर्सनैलिटी था कि सामान्य मनुष्य तो इससे बात नहीं कर सकता, बहुत प्रभावित व्यक्तित्व था, बाह्य व्यक्तित्व भी इतना था, इतना समर्थ पुरुष थे, उतना व्यक्तित्व के धनी थे। और उन्होंने परीक्षा लेने के विचार किया तो गाथा दे दी कोई, केशकाश करो, पता चल जाएगा तुमको ज्ञान है कि नहीं है। देख रहे गुरुदेव को ग्रंथ वापिस कर दिया, अर्थ में किया। क्या बोली कि इसका अर्थ आ जाए, इसका नाम ज्ञान नहीं है। क्या बोली कोई गाथा का अर्थ तो विद्वान को भी आ सकता है, इसलिए कोई वो ज्ञानी हो जाता है क्या? तो इतनी लंबी चौड़ी चर्चा नहीं की उन्होंने, उन्होंने तो एक ही बार वचन में बात पूरी कर दी। ग्रंथ वापिस करके बोल दिया कि इस गाथा का अर्थ आया, इसका नाम ज्ञान नहीं है, ग्रंथ ले लो वापिस। अब देखिए गुरुदेव जैसे पर्सनालिटी के ऑफर को रिजेक्ट करना ये कोई मामूली हिम्मत की बात नहीं है। हाँ, गुरु के आज्ञा को कैसे रिजेक्ट किया जाए, कोई इसका अस्वीकार किया जाए क्या? हाँ, लेकिन हिम्मत थी इतनी 18 साल की उम्र में, गुरुदेव तो शायद 24-25 साल उसकी उम्र में बड़े हैं, क्योंकि 18 साल तो 45-44 साल के उम्र में थे। हमने तो वृद्धावस्था में ही दिखे हैं, पिछले वृद्धावस्था में इतने व्यक्ति तो उनका दिखता था, तो इस उम्र में तो कितना होगा, बिल्कुल राजदूत जैसे देख लो, तो ऐसे पूरे होंगे थे राजा। फिर भी वो तस्मस नहीं हुई, वापिस कर दिया। अच्छा, इसको ज्ञान नहीं कहते हैं तो फिर ज्ञान किसको कहते हैं बताइए, सीधा प्रश्न कर दिया। तो उन्होंने बता दिया कि ज्ञान किसे कहते हैं, कि ये कोई प्रत्यक्ष बोधन नहीं है, ये ज्ञान है। क्या बोले, ये हमारा जो प्रत्यक्ष बोधन है वही ज्ञान है, और कोई ज्ञान ज्ञान कुछ नहीं है, यही ज्ञान है हमारा। बस बात खत्म हो गई परीक्षा के। तो ऐसे कहने का अभिप्राय क्या है कि ज्ञानी कभी कैसी बात करेंगे, कभी कैसी बात करेंगे, परीक्षा भी लेंगे, उल्टी सुलटी भी बात करेंगे। हमको भी अनुभव हुआ है उल्टा सुलटा प्रश्न का, कभी कभी कर लेते थे। गीता में आता है, हम तो आए हैं वहां से, विष्णु से, कर्मण्ये अधिकारस्ते ना फलेषु कदाचन, कर्म में तेरा अधिकार है फल में नहीं है, कर्म किए जाओ फल की आसक्ति मत रखो। क्या अर्थ कथन है इसका, क्या सही बात है क्या? पूछ लेते थे कभी कभी, कभी समाचार में से भी पूछ लेते थे, कभी भगवद गीता में से भी पूछ लेते थे। ऐसे सुभाग भाई भी एक अनन्य शिष्य थे श्रीमद जी के, उनको ये पत्र लिख रहे हैं कि किसको सम्यक दर्शन का बीज कहा जाए, जो बीज निष्फल कभी नहीं होगा, सम्यक दर्शन को लेकर के ही आएगा। तो जिसको ज्ञान की पहचान हुई, पहचान होने से वचन की प्रतीति आई, आज्ञा रुचि हुई, अपूर्व आज्ञा की अपूर्व रुचि हुई और स्वच्छंद निरोध भक्ति हुई, उसी को संकेत का पहला प्रकार कहने में आया है। स्वच्छंद मत आग्रह तभी व्यर्त सदगुरु लक्ष्य, सदगुरु कहने उसी लक्ष्य में वर्त रहा है। संकेत कहने बाकी कारण गणे प्रत्यक्ष, वो बात उन्होंने सूत्रा गाथा में कही।
आज्ञा का तो अंगीकरण होता है, तो
रुचि है, उसका दृष्टांत दिया है पीर सोगानी जी ने पतंगा के साथ। पतंगा को दीपक की रुचि होती है, कैसे होती है, दीपक को देख करके वह सोचता है क्या कि वहां जाने लायक है या नहीं है, आज जाए या कल जाए, थोड़ा विचार करके जाए या बगैर विचार करके जाए। वो तो सीधा ही स्वाहा कर देता है अपने आप को दीपक में, ऐसे झपट लगाने का परिणाम को रुचि कहते हैं। ऐसी रुचि आज्ञा की होती है। तो परमेश्वर बुद्धि किसको कहे, साक्षात परमात्मा 223 में क्या कहा विनोद जी, देवधारी दिव्य मूर्ति रूप साक्षात परमात्मा, जिसने सत्पुरुष में देखा उसको मोक्ष मार्ग अति निकट है, जहां तक ऐसा नहीं देखा वहां तक मोक्ष मार्ग विकट है, आमने सामने बात है। 223 में कहा उन्होंने, संकेत का पहला प्रकार है परमार्थ के स्पष्ट अनुभवांश से प्रतीति, यह संकेत का दूसरा प्रकार है। चार शब्द में परिभाषा कर दिया है, परमार्थ में स्वभाव, परम प्रयोजनभूत आत्मस्वरूप, उसकी स्पष्ट प्रतीति में विश्वास, कहां से, अनुभवांश से, वेदन अंश से, ज्ञान में चलता हुआ ज्ञान वेदन के आधार से स्वभाव का विश्वास आया कि मैं ऐसा ही हूं। गुरुदेव के शब्द में कहें तो राग का अंश अभाव करके वेदन अंश के आधार से जिसने स्वरूप का निश्चय किया कि ऐसा ही स्वरूप है, इसको भाव भाषण रूप दूसरा संकेत कहने में आया है। ऐसा भाव भाषण होने से निश्चित रूप से अल्पकाल में निर्विकल समय दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। उस विषय में लंबी चौड़ी चर्चा हमने निर्वाण दर्शन की पगडंडी के तीसरे प्रकरण में कई की है। समय होने जा रहा है, संक्षिप्त में इसका जो विवरण उन्होंने दिया है, तीसरा संकेत तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं गुरुदेव की कृपा से, कि निर्विकल्प परमार्थ अनुभव यह संकेत का तीसरा प्रकार है। इस निर्विकल्प दशा के विषय में तो काफी चर्चाएं भी चलती हैं हम विद्वान में, लेकिन पहला संकेत दूसरा संकेत का कारण है, दूसरा संकेत तीसरे संकेत का कारण है, वितराग में तीनों संकेत मान्य किए हैं। मैं कहता हूं वो बात में तीनों संकेत वितराग में मान्य किए हैं, तीनों संकेत उपासना करने योग्य है, तीनों संकेत सत्कार करने योग्य है, तीनों संकेत भक्ति करने योग्य है। तीनों ऐसा संक्षिप्त इस पत्र का दिया है। समय हमारा पूरा हो गया है, यहां तक रखेंगे। Thank you.
Thank you.